निक और प्रियल कोल्ड स्टोरेज में फंसे थे। वहां अंदर बहुत जल्दी तापमान कम होने की वजह से ठंड बढ़ गई थी। निक और प्रियल का ठंड के मारे बुरा हाल हो रहा था। निक ने मोबाइल चेक करते हुए कहा, इस बंद स्टोरेज में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। उस आदमी को शूट करने के बाद पुलिस गन भी ले गई। प्रियल ने कांपती आवाज में कहा, निक, मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज डू समथिंग, मुझे बहुत सर्द लग रही है। निक ने प्रियल को गले लगाकर कहा, बस हो जाएगा, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, तब तक जरूर कोई ना कोई आ जाएगा। आप हम मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करें, निक ने सोचा। मुझे तुमसे ज़्यादा कोल्ड फील हो रही है, लेकिन मुझे तुम्हें संभालना होगा, मेरे लिए, नील और न्यू के लिए, जो अपनी गुड़िया का इंतज़ार कर रहे होंगे। प्रियल ने कहा, कुछ बोलिए ना निक, आप ठीक तो हो ना? निक ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है, प्लीज़ तुम मेरे पास रहो ना, शायद हम साथ रहें तो सब ठीक हो जाए। हाँ, शायद। कोल्ड स्टोरेज में फंसे निक और प्रियल को वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वे दोनों सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि दोनों अच्छे से जानते थे कि अगर वहां कोई नहीं आया तो उन दोनों की जान भी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन लड़कियों को पुलिस स्टेशन पहुंचाकर वहां से बाहर आ रहा था। आर्यन ने खुद से कहा, निक और प्रियल तो अब तक घर भी पहुंच चुके होंगे, एक काम करता हूँ, मैं भी उन्हीं के घर चला जाता हूँ, इसी बहाने दोनों बच्चों को भी देख लूँगा, लेकिन अब तक तो दोनों बच्चे सो चुके होंगे। इन लड़कियों की रिपोर्ट भी तो देनी है, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। आर्यन ने निक और प्रियल दोनों का ही कॉल ट्राई किया, लेकिन उनका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। उन दोनों का ही फ़ोन ना लगने की वजह से वो परेशान हो गया। कहीं वे दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं होंगे ना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों का ही फ़ोन ना लगे। प्रियल नहीं तो निक इतना केयरलेस कभी नहीं रहा। एक बार मारिया आंटी को कॉल कर लेता हूँ, शायद वे बता दें कि निक और प्रियल पहुँच चुके हैं या नहीं, अब तक तो उन्हें घर पहुँच जाना चाहिए था। आर्यन ने मारिया आंटी को कॉल किया, वे उस समय सो रही थीं। आधी रात को आर्यन का फ़ोन आने की वजह से वे गुस्सा हो गईं। मारिया ने कहा, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी तो लगता है कि मुझे किराएदार रखना ही नहीं चाहिए, मेरा जीना हराम कर देते हो, ना तो दिन में चैन से रहने देते हो और ना ही रात को चैन से सोने देते हो, बोलो इस वक्त फ़ोन किया है? आर्यन ने पूछा, मारिया आंटी, निक और प्रियल घर आ चुके हैं? मारिया ने कहा, लेकिन वे दोनों साथ में बाहर क्यों जाएंगे? कहीं उन दोनों का अफेयर तो नहीं चल रहा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, आई हेट कपल्स, अगर वे दोनों साथ मिले तो मैं उन्हें घर से निकाल दूंगी। आर्यन ने इरिटेट होकर जवाब दिया, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन अभी जाकर देखकर बता दीजिए कि वे दोनों घर पर आए हैं या नहीं। हाँ, देखूंगी तो ज़रूर, क्योंकि अगर दोनों साथ में मिले तो दोनों को इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगी, तुम ही लाए थे ना उस लड़के को यहाँ? मारिया चिल्लाती हुई नीचे आई तो उसने देखा कि हॉल में एक काउच पर नील और न्यू आरोही की गोद में सर रखकर सो रहे थे। आरोही को बैठे बैठे ही नींद आ गई थी। मारिया आंटी चिल्लाती हुई आई तो आरोही की आंख खुल गई। आरोही ने झुंझलाकर कहा, क्या हुआ आंटी, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हैं? आधी रात को फिर से आपको दौरे आने लगे क्या? मारिया ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मैं क्या तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ? कहाँ है वो प्रियल और वो लड़का जो नया आया था? आरोही ने धीमी आवाज में कहा, आप धीरे बोलिए प्लीज, आपको दिख नहीं रहा है दोनों बच्चे सो रहे हैं? वे दोनों किसी काम से बाहर गए हुए हैं। दोनों एक साथ? आरोही ने कहा, क्यों, आपको भी साथ लेकर जाना चाहिए था क्या? मारिया आरोही से बहस कर रही थी, जबकि आर्यन ने उन दोनों की पूरी बात सुन ली थी। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी वापस स्टोरेज वाले एरिया की तरफ मोड़ ली। आर्यन ने गाड़ी चलाते हुए कहा, इसका मतलब निक और प्रियल अभी तक वहीं पर फंसे हुए हैं। ओ माय गॉड, प्लीज कुछ गलत ना हुआ हो, मुझे उनके साथ किसी को जरूर भेज देना चाहिए था। प्रियल को तो वो लोग पहले भी किडनैप कर चुके थे, कहीं निक को भी तो नहीं? आर्यन फास्ट ड्राइव करके जल्दी ही वहां पर पहुंच चुका था। वो दौड़कर नीचे स्टोरेज वाले एरिया में गया तो उसने देखा कि वहां बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। उसने जल्दी से इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसकी नजर कोने में लगी मशीन पर गई, जिसका तापमान बिल्कुल लो किया हुआ था। आर्यन ने जल्दी से मशीन को बंद करके दरवाजा खोला तो अंदर निक और प्रियल एक दूसरे की बाहों में जमीन पर बैठे हुए थे। उन दोनों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आर्यन ने उनके पास जाकर कहा, आई एम सो सॉरी यार, मैं तुम दोनों को यहीं पर ऐसे ही छोड़कर चला गया, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम दोनों चलो मेरे साथ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। निक ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, नहीं आर्यन, प्रियल बेहोश है, प्लीज तुम उसे उठाकर गाड़ी तक लेकर चलो, मैं आ जाऊंगा, हम दोनों को घर छोड़ दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। आर्यन ने कहा, हाँ, लेकिन तुम दोनों को यहाँ से उसी वक्त निकल जाना चाहिए था, ये जगह सेफ नहीं थी, आई विश हम दोनों उसी टाइम यहाँ से चले जाते।
आर्यन प्रियल को गोद में उठाकर गाड़ी में लेकर गया, जबकि निक धीरे धीरे चलकर गाड़ी की तरफ आ रहा था। वो उन दोनों को लेकर मारिया आंटी के घर पहुंचा। मारिया फिर से सोने जा चुकी थी, जबकि आरोही के साथ दोनों बच्चे जाग रहे थे। आर्यन निक और प्रियल को लेकर अंदर आया। उन दोनों का शरीर ठंड से अभी तक कांप रहा था। जहां निक खुद को जैसे तैसे करके संभाल पा रहा था, तो वहीं प्रियल बेहोशी की हालत में आर्यन की गोद में थी। उन दोनों को देखकर आरोही, नील और न्यू घबराकर उनके पास आए। नील ने कहा, गुड़िया क्या हुआ इन्हें? न्यू ने पूछा, निक आपको क्या हुआ? आरोही ने कहा, ये सब कैसे? मैं सिमरन अर्जुन को कॉल करती हूँ, वे दोनों देख लेंगे। नो, मैं संभाल लूंगा। आर्यन, प्रियल को मेरे रूम में लेकर चलो, निक ने कहा। आर्यन प्रियल को निक के कमरे में लेकर गया। दोनों बच्चे आरोही के साथ खड़े थे। उन्हें निक पर पूरा भरोसा था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। नील और न्यू रोते हुए कहा, हमें गुड़िया के पास जाना है, निक ने थके स्वर में कहा। आरोही, प्लीज बच्चों को अपने पास रखना और डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, नील ने कहा। प्रॉमिस? न्यू ने रोते हुए कहा। हमारी गुड़िया को जल्दी से ठीक कर देना पापा, निक ने कहा। हाँ बाबा, प्रॉमिस। निक दोनों बच्चों को प्रॉमिस करके वहां से प्रियल के पास गया। वो इतना परेशान था कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि न्यू ने उसे पापा बुलाया था, जबकि आरोही न्यू को हैरानी से देख रही थी। क्या न्यू ने निक सर को पापा बुलाया? और सर का तो इस तरफ ध्यान भी नहीं गया, लेकिन इसे सब कुछ कैसे पता हो सकता है? अभी इससे कुछ पूछना सही नहीं होगा, पहले इस बारे में प्रियल से बात करूंगी, आरोही ने सोचा और बच्चों से कहा, चलो बच्चों सो जाओ, निक्सर सब संभाल लेंगे। आरोही दोनों बच्चों को लेकर उनके कमरे में ले गई और उन्हें सुलाने की कोशिश करने लगी। तो वहीं निक प्रियल के रूम में पहुंचा तो आर्यन वहीं बेड के पास खड़ा था। आर्यन ने कहा, तुझे डॉक्टर बुला लेना चाहिए निक, आई डोंट थिंक कि इस हालत में तुम बॉडी हीट के जरिए प्रियल को ठीक कर पाओगे, तुम्हारी खुद की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है। निक ने कहा, अभी मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आर्यन, प्रियल के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर होने के नाते अगर कोई और पेशेंट होता तो भी मेरा यही डिसीजन होता। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, मैं यहीं बाहर ही हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बुला लेना, निक ने पलके झुकाकर हामी भरी।
आर्यन उनके कमरे से बाहर आ चुका था, जबकि उसके जाते ही निक ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और प्रियल के पास आकर लेट गया। निक भी ठंड से कांप रहा था, लेकिन अभी उसके लिए प्रियल की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। निक ने प्रियल के पास आकर कहा, सॉरी गुड़िया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से ऐसे करीब आएंगे, लेकिन तुम्हारी जिद हमेशा मुझे प्रॉब्लम में डाल देती है, एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर अच्छे से क्लास लगाऊंगा। निक प्रियल के करीब आ गया। प्रियल बेहोश थी, जबकि ना चाहते हुए भी निक प्रियल को बचाने के लिए उसके करीब आना पड़ा। नील और न्यू आरोही के पास सो रहे थे। सुबह प्रियल की आंख खुली तो निक उसकी पीठ की तरफ सो रहा था। प्रियल ने भरी आवाज में कहा, थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ, लेकिन निक। अचानक उसके खुद पर नजर पड़ी तो उसने आंखें बड़ी करके कहा, मेरे कपड़े? प्रियल ने गुस्से में कहा, निक आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे मेरे करीब आने की? ऐसे बिना पूछे कौन? मैं? निक, निक उठो आप और मेरे सवालों के जवाब दो। जैसे ही प्रियल ने निक को जगाने के लिए उसे छुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बुखार से तप रहा था। प्रियल ने घबराते हुए कहा, निक, निक क्या हुआ आपको? आप आंखें खोलो निक, ये कुछ जवाब तो नहीं दे रहे। प्रियल जल्दी से बाथरूम में जाकर कपड़े पहनकर बाहर आई और अर्जुन को कॉल करके वहां बुलाया। आरोही और आर्यन भी वहीं मौजूद थे। निक की हालत देखकर प्रियल बस रोई जा रही थी। अर्जुन निक का चेकअप कर रहा था। प्रियल ने रोते हुए कहा, हमेशा मेरी बेवकूफियों की वजह से निक को प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। अर्जुन तुम चुप क्यों हो? पता ना ये ठीक तो है ना, प्लीज अर्जुन। अर्जुन ने कहा, प्रियो तेरे रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, इसे अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है। फिर उसने गुस्से में कहा, दोनों के दोनों ही पागल हो, क्या जरूरत थी बॉडी हीट देने के लिए तेरे पास आने की, जबकि अच्छे से जानता था कि इससे खुद बीमार हो जाएगा। आर्यन ने कहा, मैंने भी इसे मना किया था, लेकिन तुम तो जानते हो कि ये भी कम जिद्दी नहीं है। लगभग 20 मिनट बाद वहां एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। प्रियल दोनों बच्चों को आरोही के पास छोड़कर अर्जुन और आर्यन के साथ निक को लेकर हॉस्पिटल गई, जहां उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। प्रियल बाहर परेशान होकर रो रही थी कि तभी आर्यन उसके पास आया। आर्यन ने प्रियल के पास बैठकर कहा, तुम्हारे ऐसे रोने से क्या हो जाएगा, लेकिन मैं अगर जिद नहीं करती तो शायद आज निक की हालत इतनी खराब नहीं होती। सही कहते हैं वो, मैं बहुत जिद्दी हूँ। आर्यन ने कहा, तुम्हें अकेले वहां नहीं जाना चाहिए था, सब कुछ हैंडल होने के बावजूद भी तुम और निक वहां बैठकर बहस कर रहे थे, तभी सब कुछ इतना क्रिटिकल हो गया। हाँ शायद कहीं ना कहीं निक की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने तो बच्चों को भी अब तक सच नहीं बताया, मेरी वजह से निक को अपने बच्चों से भी दूर रहना पड़ रहा है। प्रियल को निक के लिए बहुत घबराहट हो रही थी और वो लगातार रोए जा रही थी। अब तुम पुरानी बातों को सोचकर खुद को तकलीफ देना बंद करो, होप्स हो कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाए, आर्यन ने उसे दिलासा दिया।
थोड़ी देर बाद अर्जुन वहां आया। उसे देखकर प्रियल जल्दी से उसके पास गई। अर्जुन, उन्हें होश आ गया क्या? प्रियल ने पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। डोंट वरी प्रियू, ठीक हो जाएगा वो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, प्रियल ने कहा। ये सब मेरी वजह से हुआ, ना मैं वहां अकेले जाती और ना ही निक को मेरे पीछे आना पड़ता। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ प्रियल, तुम्हारी तरह निक भी कम जिद्दी नहीं है। रात को उसकी सिचुएशन ठीक थी जबकि तुम बेहोश थी। उसने तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल लाने के बजाय खुद ट्रीट करने का सोचा और इसी चक्कर में खुद और ज्यादा बीमार हो गया, आर्यन ने बोला। अर्जुन ने कहा, हाँ निक का स्टेप सही था, वरना यहाँ उसकी जगह आज प्रियो होती और सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर। ओके लीव। अच्छा प्रियो, दोनों बच्चे कहाँ हैं? जब निक को होश आएगा और वो दोनों बच्चों को अपने पास देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तुम उन्हें यहाँ ले आओ, मैं निक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चे वैसे भी स्कूल में होंगे। अर्जुन, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता तब तक मैं उनके पास बैठ सकती हूँ ना? प्लीज मुझे जाने दो, प्रियल उसके आगे गिड़गिड़ाने लगी। आर्यन ने कहा, अच्छा प्रियल मैं दोनों बच्चों को यहाँ लेकर आता हूँ। अर्जुन, प्रियल निक के पास बैठ सकती है ना? वैसे अलाउड तो नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें लेकर चलता हूँ, कहकर अर्जुन उसे अंदर ले जाने लगा। आर्यन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल लाने के लिए वहां से निकल चुका था तो वहीं अर्जुन प्रियल को निक के पास लेकर गया। प्रियल ने कहा, तुम अब यहाँ से जा सकते हो अर्जुन। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। तुम कब से रोए जा रही हो यार? ये बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा तो फिर से तुम पर चिल्लाना शुरू कर देगा, प्रियल ने कहा। इस बार मेरी गलती थी तो ये मुझ पर चिल्ला सकते हैं, मैं इन्हें कभी इस हालत में नहीं देख सकती, इससे अच्छा मुझे कुछ हो जाता। अब ये बकवास मत कर, रोना बंद कर और इसे अपनी बातों से पटाती रह, तेरी बात सुनकर ये पक्का इरिटेट होकर उठ जाएगा और बोलेगा कि चुप हो जाओ मेरी चैटर बॉक्स। अर्जुन ने माहौल हल्का बनाने की कोशिश की ताकि प्रियल को अच्छा महसूस हो। अर्जुन की बात सुनकर प्रियल मुस्कुराने लगी। वो वहां से बाहर चला गया जबकि प्रियल निक को एकटक देखे जा रही थी।